शिवं वन्दे जगद्गुरुं ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उपस्थित प्रिय आत्मन, आज आपके समक्ष डॉक्टर पटेल सैनी अरविंद वदन ने प्रार्थना पर विचार विमर्श करने के लिए हमें संकेत दिया है। हर धर्म में प्रार्थना है, प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना परमेश्वर से शक्ति मांगना, कोई राम की प्रार्थना करके राम से शक्ति मांगता है, संस्कार से कोई कृष्ण की प्रार्थना करता है, कोई जीसस की, कोई पैगंबर की, गुरु महाराज की, स्वामी नारायण की। ये आपकी आस्था और विश्वास की बात है, लेकिन हर समझदार व्यक्ति किसी परिवार और संस्कार में जन्म लेने के बाद प्रार्थना का कोई न कोई स्वरूप संस्कार में है। ऋषि मुनियों ने भी प्रार्थना की बात की। प्रार्थना में अंगद भी है, सामूहिक भी है। गांधी जी जब सामूहिक प्रार्थना करते थे, एक बार गांधी जी से पूछा गया कि कुछ समय आप अलग से भी प्रार्थना करते हैं और शाम को संध्याकालीन में सामूहिक प्रार्थना करते हैं, तो आप कुछ बताएंगे? कहते अंगद प्रार्थना में मैं प्रभु से शक्ति मांगता हूं कि जो कर्म आज का है उसे पूरा करने के लिए हमारे पर कृपा करें। और वही बात उन्होंने उदाहरण से दिया, अकेला मैं किसी अधिकारी के पास जाऊं और प्रार्थना करूं, सुने या न सुने इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम समूह में जाते हैं किसी अधिकारी के पास, तो उस पर वो विचार करता है कितने लोग आए हैं, तो जरूर विचार करना चाहिए। तो गांधी जी का जवाब है कि जो आपके अहंग उपासना है, अंगद उपासना है, वह भी ठीक है और सामूहिक जो प्रार्थना है वो भी ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जी का आधार पर मैं अकेला कलेक्टर के पास गया तो शायद इतना तवज्जो ध्यान नहीं देगा, लेकिन हम 50 आदमी लेके गए तो ध्यान देगा। संघ में शक्ति है, इसलिए सामूहिक प्रार्थना भी होनी चाहिए परिवार में और अंगत भी होनी चाहिए। सुबह जब आप उठें तो अपनी अंगत प्रार्थना करें और शाम को आपके घर में राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, आरती, जो कुछ भी है करके थोड़ी देर सत्संग करें, सामूहिक प्रार्थना करें, ईश्वर से शक्ति मांगें, ये भी ठीक है। तो प्रार्थना के दो स्वरूप हैं, प्रथम तो साकार और निराकार। साकार में किसी न किसी तरह सभी आते। अगर हमारा मुस्लिम भाई है तो आप देख लीजिए, चांद देख करके ही अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करता है। ईसाई हैं, चर्च में जाते हैं और वहां पर भी चिन्ह है क्रॉस का। तो जा विचार के लिए किसी न किसी तरह से साकार पूजा, चंद्रमा के रिश्ते से प्रहलाद का स्वरूप देखकर, राम का, कृष्ण का, शंकर का, स्वामी नारायण का, महावीर का, भगवान बुद्ध का, ये आकार साकार ही है। लेकिन आकार ये निराकार में से है, इसलिए जो निराकार है जब वो प्रकट होता है तो आकार बना, लेकिन आकार जहां से आया उसमें वापस चला जाए। समुद्र में लहर उत्पन्न होती है, पानी का उठाव से लहर बना, और पानी का उठाव जब बंद हुआ तो वापस समुद्र में आ गया। पानी उठना उठना ही एक व्यवस्था से पानी उठता है तो लहरें आ जाती, शांति है, हवा नहीं चल रही है, कोई समुद्र में बड़वा नल शांत है तो लहरें वापस आ जाती हैं। लेकिन लहर का उठना तो या वापस आना एक प्रक्रिया, लेकिन समुद्र जब शांत है तो लहरें नहीं बोलती। तो यूं से समुद्र में से जब उठाव आता है तो लहरें बोलते हैं और पानी का ही शुरू। तो निराकार में से जितने आकार हैं ये सब ठीक है, उसका जो भी नाम देना चाहे आप दें। ये नदी है, नदी का नहीं घाट है, हमारे पास भी झनौर का घाट है, धर्मशाला का है, अंगारेश्वर गांव का है, परमहंस कुटीर का है, नरसिंहपुरा का है, निकोरा का है, शुक्ल तीर्थ का है, कौरा का है, लेकिन नदी तो वही की वही है। घाट का होता है जाकर के पानी लाना या पार करना। आप कहाँ जा रहे हैं घाट पर, क्या पानी लेने? आप कहाँ जा रहे हैं घाट पर, उस पार जाना है, लेने जहाँ जाते उसका नाम भी घाट, और पार उतरने के लिए उसका नाम भी घाट। एक व्यवहारिक बात देखिए, आप पैदल क्यों जा रहे हैं? कहते कोई सवारी नहीं मिली। सवारी वाले पूछा कहाँ बैठे क्यों हैं? कहते कोई सवारी नहीं है, कोई बैठने वाला नहीं है। या विचार कीजिए, इसलिए हर धर्म में प्रार्थना, प्रार्थना के दो रूप साकार हो गया। लेकिन आज विज्ञान भी सिद्ध कर दिया कि आप साकार निराकार विवाद विवाद में न पड़े, ये बात विवाद में न पड़े। आप केवल सोचें कि आपको कुछ करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे शब्द अंतरिक्ष में जाते हैं और वहां से वापस होकर मुझे मिलते हैं। दूसरे को मिले कि न मिले लेकिन हमें मिलते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। प्रार्थना का आधार है लेना और लेने के बाद देना। हे ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने धर्म का पालन कर सकूं, अपने अधिकार जो प्राप्त हुआ है उसमें कमजोर न बनूं, मैं पिता हूं तो पिता का धर्म पालन करूं, शक्ति दो, मैं पुत्र हूं तो पुत्र के धर्म का पालन करूं, शक्ति दो, मैं एक सरकारी अधिकारी हूं तो मुझे शक्ति दो कि अपने अधिकार की सीमा में रहते हुए मैं भी धर्म का पालन करूं। इसलिए धर्म पालन में दीवार आने पर, परेशानी आने पर, तकलीफ आने पर प्रार्थना के द्वारा उसमें से रास्ता निकले, ये एक व्यवस्था है। एक है व्यवस्था अपने लिए मानना, ये तुच्छ प्रार्थना है, और मान करके सबके लिए सोचना ये उच्च प्रार्थना है। रावण प्रार्थना करता था शंकर जी, लेकिन अपने लिए मानता, परिवार के लिए भी नहीं मानता था, समाज के लिए भी नहीं। लेकिन राम की प्रार्थना में अपने लिए नहीं है, समाज के लिए है, उसी समाज के उत्थान के लिए उन्होंने घर का भी त्याग किया। या विचार कीजिए, आपके पास जो कुछ है उसमें केवल आपका हिस्सा नहीं है, उसने सबका हिस्सा है। और हमारे यहाँ प्रार्थना में कहा गया, जब भगवान से पूछा गया पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तुम अपने भाव से जो कुछ भी दो, लेकिन अगर तुम्हारा भाव शुद्ध है तो फल नहीं, फल की पत्ती भी दीजिए, पुष्प दीजिए, तुलसी दल दीजिए, लेकिन तुम प्रेम से तो दो, भाव से दो। तो प्रार्थना के साथ हमारे कृष्ण ने, साधु संतों ने भाव की बात की। मेरी माँ जब रोटी बनाती है तो भाव है, नौकरानी रोटी बनाती है लेकिन उसमें भाव नहीं। इसलिए माँ की बनाई हुई रोटी स्वादिष्ट हो, लेकिन नौकरानी के द्वारा बना हुआ भोजन स्वाद में नहीं, फीका होता है, क्योंकि उसमें भाव नहीं। बड़ी एक व्यवहारिक बात बताता हूँ, चाहे आपके रिश्तेदार हों कि पड़ोसी हों, भाव से जब बुलाते हैं उस समय का अपना विचार देख लीजिए, और आप स्वयं जाइए उनका भाव नहीं हुए तब देख लीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो ओरा की बात की है उसे पता लग जाता है। आप मेरे पास आए, मेरे अंदर प्रसन्नता है, तो यहाँ फाइनेंस नाम की ग्रंथि है, वो शक्ति जनरेट करती है, तो मेरा ओरा प्रभावशाली बनेगा, आपको मेरे पास बैठने का विचार आएगा, मेरे विचार अच्छे लगे, मेरे भाव अच्छे लगे, यहाँ से हटने का मन नहीं होगा। यही जब मैं आपके पास आऊँगा तो वही हालत मेरी होगी। आप गुरु को देखकर प्रसन्न हुए, ओरा बड़ा भले 5 मिनट ले गया, लेकिन गुरु जी चाय पी लीजिए, बैठिए, थोड़ा सत्संग कीजिए, ये सब लंबे समय तक रोकने की तरकीब है। बाकी आपके मन में है कि थोड़ी देर गुरु जी बैठे, ये प्रसन्न केवल फॉर्मेलिटी है, कर्म है। तो मैं जाऊंगा 5 मिनट के लिए, 2 मिनट में ही भाग आऊंगा, क्योंकि आपका ओरा जो है हमारे पर अटैक करेगा, हमारे मन को अप्रसन्नता प्राप्त होगी। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, वही हार्ट वाली जो बात है ओरा की है वैज्ञानिक। आप भले कितना व्यवहार से करें, लेकिन अंदर अगर भाव में कमी है, भाव का भाव है, तो ना मैं आपके साथ लंबे समय तक रहूंगा, न आप मेरे पास लंबे समय तक। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, और बड़ी एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ये ओहरा की बात, ये विचार की बात का प्रभाव क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, बड़े प्यार से समझा के कह रहा हूं, स्वामी जी जिस दिन दूसरों के यहाँ आमंत्रण मिलता है, बात वही होती है, दाल भात का भो मिठाई हो रोटी हो, लेकिन वहाँ आनंद बहुत आता है। और जब हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो लोगों को आनंद आता है, मुझे इतना आनंद नहीं आता, अंदर की बात करें तो मैं प्राइवेटली पूछता हूँ, जब दूसरों के यहाँ जाते हो तो कोई हिसाब किताब लगाते हो, कितने की मिठाई आई, कितने की पूड़ी आई, कितने की भजी आई, कितना दिया, कहा नहीं। और जब आप करते हो तो खिलाने से पहले कितना हिसाब लगा, और फिर देखते हो कि हिसाब के अनुसार ये हमारे बेटे को कुछ दिया कि नहीं दिया। हाँ स्वामी, ये बात आपकी ठीक, तो आप जो हिसाब लगा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ बात है, माता पिता गुरु के लिए भी कहा गया है कि कभी आपसे मांगेंगे नहीं, न माँ न पिता न गुरु, लेकिन पुत्र को चाहिए यथाशक्ति जब माता से मिले, गुरु से मिले, पिता से मिले, तो कुछ देना चाहे, चाहे कुछ दे, वो खुश हो जाता है, मेरा बेटा। ये ओरा जो है उसका देखा गया है, हालांकि आप पिता से ही लेते हैं, पिता ने ही आपको लायक बनाया, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था है कि जब भी माँ से मिले, पिता से मिले, गुरु से मिले, नहीं तो तुलसी दल तो उधर, माँ को कोई कमी नहीं, माँ ने हमें ही दिया, पिता को कोई कमी नहीं हमें दिया, गुरु ने बहुत कुछ आपको दिया, लेकिन एक व्यवहारिक प्रसन्नता है। अभी आपको छोटी सी बात बताऊँ, प्रैक्टिकल इसलिए कह रहा हूँ कि उस मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए सब बातें हैं। बड़ी हाथ जोड़ करता हूँ, मैं अपना परिचय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे की बात न करके जो मैंने अनुभव किया उसकी बात तो आपकी कृपा से अच्छे घर में पैदा हुआ हूँ। पिताजी बहुत अच्छे थे, बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन मुझे अभी तक याद है, कभी कुछ नहीं थी। लेकिन जब पिताजी बाहर से घर आए तो सबसे पहले पिता से पूछता था, पिताजी मेरे लिए कुछ लाए? कभी कुछ नहीं। हाँ बेटा लाए, मन खुश हो जाता था। और कभी कहते बात में बताता तो मैं जाकर उनका थैला देखता था कि लाए हैं कि नहीं लाए। मैं अपनी बात बताऊं, दूसरों के क्या, हालांकि कभी कुछ नहीं, लेकिन स्वभाव आप लोग भी मेरे स्वभाव को समझें, कभी की बात नहीं। लेकिन हर पुत्र हर बेटी चाहती है कि मेरे पिता कुछ लाए। आप देख लो, आपका पुत्र होते 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 आपको वो पिता बन गया, तो जब मैं पुत्र था तब भी चाहता था, और आज पिता हूं तो भी पुत्र से चाहता हूं। जब पुत्र था तो पिता से चाहता, और आज पिता बन गया तो कि भाई कुछ तो ला, एक मनोविज्ञान। इसलिए हमारे भारतीय ऋषियों सोचा कि चाहे करोड़पति, मैं करोड़पतियों तक की बात करता हूँ, अभी तो मुझे इसका बहुत अभाव है, एक गरीब के यहाँ जाइए, उसके बच्चे को कुछ दीजिए, जल्दी नहीं लेता, नहीं नहीं हमने सेवा की। अब करोड़पति के यहाँ जाइए, पहले पूछता है कि ये तेरा मामा कुछ दे के गया कि खाली हाथी गया? मैंने सुना इसलिए तेरा मामा आया था कुछ दिया कि तो कहता इतना दिया। अरे करोड़पति होकर बस 200 रुपया दिया, जबकि कभी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा, आप जिसके घर जाइए तो कुछ दे दीजिए। अब इसी तरह से और बातें कही गई कि कर्म ऐसा करो कि दूसरे को प्रसन्नता मिले, मतलब किसी की चिंता। अब भोजन की बात, चलो मामा जी आए, मेरी माँ ने मामा जी को अपने भाई को अच्छी तरह खिलाया, और माँ को थोड़ा सा ज्यादा मामा खा गए बहन के प्रेम में, मेरी माँ के प्रेम में। अब कहीं मेरा चाचा भूल गया कि बड़ा भूखा आया था, उठा लो कर। चाचा बोल गए तो बहुत भूखा था, मैं साथ में बैठा था, 2500 भजिया खा गया, 2500 पूरी खा गया। तो आप न खाइए तो निंदा करने वाला क्या कहेगा, जिंदगी में खाया नहीं, और थोड़ा स्वाद में खाइए तो भूखा है, हर तरह से मारे जाते हैं। मैं सुना हूँ, बताता हूँ, किसी ने बहुत अच्छा भोजन बनाया, मैं भी साथ में था, तो हम लोग थोड़ा खाए, तो किसी ने कह दिया जिंदगी में खाए नहीं होगा तो क्या खाएंगे स्वाद। मैंने कहते भाई दूसरे दिन अच्छी तरह खाएंगे, जब अच्छी तरह खाया तो कोई बोला लगता 2 दिन के भूखे हैं। मैंने कहा भाई दुनिया छोड़ो, तो वे चिंता कर रहा है। एक मैं अपनी बात बताऊं, आप लोग मेरे हैं अच्छे हैं, तो मैं हरिद्वार में था, बड़ी पुरानी बात है, हरिद्वार में था, तो संगम वाला खाड़ा है, वहाँ से एक महात्मा है, और पहले उनके होटल वगैरह थी, तो मैंने कहा भाई महात्माओं के लिए चटनी बनवा दो, क्योंकि आप होटल में थे, ऐसे ऐसे था, और पंजाब तो खाने पीने के शौकीन है ही, गुजरात भी है, तो मैंने उनसे कहा कि चटनी बनवाई, पंजाबी चटनी जो है बनवाई, पकौड़ वगैरह भजिया वगैरह से सब बनवाए खाए। एक ने क्या कहा भाई ये किसने बनवाया, कहते मनीषा ने बनवाया, तो कहते लगता है मनीषा ने पहले होटल में काम करते तो बहुत बढ़िया चटनी और पकौड़ बनवाया, मनीषा ने बनवाए तो मैं पहले होटल में काम करता। मैंने कहा हाँ भाई होटल में करता था काम, दुनिया करते। इसलिए आप किसी तरफ मत, आप देखेंगे आपको क्या करना है, अगर सबको देखोगे सबका सुनेंगे तो कोई निर्णय नहीं कर पाओगे जिंदगी में, जिंदगी में कोई फैसला नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रार्थना करता है, अगर आप इमरसन का पढ़िए उसने प्रेयर कर्ज किया है, द डायलॉग बिटवीन ऑलमाइटी लॉर्ड एंड मैन। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपके देखिए नीति है, हम आप जब बातचीत कर रहे हैं ऐसे ही खड़े होकर बात कर रहे हैं, उसमें तीसरे का आना ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं। यही बात इमर्शन कर रहा है कि जब तुम ईश्वर से बातचीत करो, प्रार्थना करो, डायलॉग करके बोलो, जब तुम ईश्वर से बातचीत करो तो उसमें तीसरे को बीच में लाने की जरूरत नहीं। यही बात हमारे उपनिषदों में आया कि समर्पण में तीसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा होगा तो आप समर्पित नहीं होंगे। और छांदोग्य उपनिषद में ऋषि ने गृहस्थी धर्म के आधार पर कर दिया, थोड़ा मैं इशारा करूँ, मेरी बेटी है, हमने शादी किया, विवाह किया, सब कुछ किया, बहुत लोग आए गए, अब समझ जाइए छांदोग्य उपनिषद के बाद, ये हमारे जितने ऋषि थे विवाहित हैं, ऋषि का मतलब गृहस्थी में रहते हुए जो समझ कर रहे, और मुनि समकर्त है जो अलग हो गया, तो ऋषि कर्त ही होता है कि गृह धर्म का पालन करते हुए जो समझ में उसे ऋषि हो, इसलिए ऋषि गृहस्थी थे। वही तरह हमारे गुरु जो पंजाब के थे वो भी गृहस्थी थे, वो ऋषि थे, अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमारी बेटी है, अब जो समझाना चाहता है, मैं पिता हूँ, उसका ससुरा भी है, चाचा भी है, वहाँ जेठ भी है, देवर भी है, इधर सब कुछ है, लेकिन मेरी बेटी जब पति से मिलेगी तो उसमें तीसरा, चाहे पूज्य हो चाहे कोई हो, अगर जमाई और बेटी के बीच में कोई बैठेगा तो मेरी बेटी जमाई अपने पति को देखेगी, पति जो है मेरी बेटी को देखेगा, लेकिन देखने से वो माँ बनने वाली नहीं। अभी इशारा समझिए, अर्थात मेरी बेटी और मेरे जमाई के बीच में पिता या ससुरा या किसी का होना वर्जित है। इसी तरह से प्रार्थना कर दो, राम की प्रार्थना करो तो बीच में कृष्ण आए, किसी की प्रार्थना करो तो बीच में, तो देख लीजिए मेरी बेटी है, इसी में समझ लो, पति अपनी जगह है, लेकिन पति से मिले तो देवर अपनी जगह है, जेठ अपनी जगह है, देवर बहुत प्यारा है, लेकिन जब मेरी बेटी पति से मिलेगी तो प्यारा देवर भी कमरे में से बाहर रहना चाहिए। बाहर रहने मतलब ये नहीं कि देवर छोटा, बाहर रहने मतलब ये नहीं कि वो खराब है, वो व्यवस्था, वो व्यवस्था। इसी तरह से जब राम की प्रार्थना करें तो कृष्ण को प्रार्थना से बाहर रखें, बाहर मतलब नहीं कि कृष्ण छोटे, वो व्यवस्था है। जब आप कृष्ण की प्रार्थना करें तो राम को बाहर रखिए, बाकी तो अगर आपको बनाएं तो व्यवस्था यह है कि हमारे राम तो राम, कृष्ण तो कृष्ण, राम की पूजा करके सब आदर करो, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि कई समय में लोग राम की, कृष्ण की, सबकी पूजा करते हैं, तो मैंने कहा पति की तरह तेरा कौन है, तीन पति नहीं हो सकते, तीन बाप नहीं हो सकते। नहीं तो एक हंसी की कहानी मैंने सुना है कि हम लोग कैसे गलतियां करते हैं बिना समझे, ये भक्ति पर ही है लेकिन हंसी की कहानी है, मैं अपने ऊपर लेता हूं। कोई महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा आश्रम में आने वाले हैं और बड़े सिद्ध हैं, बड़े अच्छे हैं, मैंने अपने शिष्य को बुलाया, ये थोड़ी नाटक जैसी बात है समझने, मैंने शिष्य से कहा देखो ये महात्मा बम्बई से आए हैं, बहुत बड़ा इनका आश्रम है भैया, मेरा आश्रम तो छोटा है, तो चार घंटे के लिए आए हैं, तो 4 घंटे में अपनी कोई कमजोर और गरीबी बात नहीं करते। तो महात्मा जी जब आएंगे तो मैं बेटा तेरे का बोलूँ, मैं पूछूंगा महाराज जी चाय पियोगे कि काफी, महाराज जी काफी बोले चाय, तू कहना कि मैं दिल्ली वाली चाय बनाऊंगी, देहरादून वाली बनाऊंगी, कलकत्ते वाली, कुछ भी महात्मा जी का 3 नाम ले, 3 नाम ले। तो आए महात्मा जी, मनोवैज्ञानिक कहने महाराज जी क्या पियोगे, कहा भाई मैं तो बम्बई रहता हूँ काफी पीता हूँ, मैंने कहा कि मैं केले को बुलाए बेटा महाराज काफी बनाओ, तो महाराज के बंगलोर वाले काफी बनवाए कि मद्रास वाली बनाए थे कलकत्ते वाले, हाथों छोटा है लेकिन मजबूत है, बनाना तो जो है वो बनाना ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। फिर मैंने कहा चावल का मतलब मूल बात चावल, महाराज जी बासमती बनवाऊँ तो खलाना बनवाऊँ कि क्या बनवाऊँ, बनाना तो वही महाराज जी ऐसा कहते भाई हाथों तो छोटा है लेकिन यहाँ तो इतनी चीज़ें तो मेरे मुंबई में भी नहीं है, ऐसा है। इसके बाद जो है मेरी माँ आई हुई थी कहानी में, तो माँ ने जहाँ मैं हूँ उसके बगल में माँ रहती है, तो थोड़ी सी कमजोरी कारण खांसी आई, तो वहाँ से बोलते आपके बगल में कौन है, मैंने कहा भाई मेरी माँ है, कहा चलो आपकी माँ का दर्शन करें, मैंने कहा नहीं मैं बुलाता हूँ, तो खांसी क्यों, मैं केले को बुलाया, मैंने कहा माँ को बुलाऊ तो दिल्ली वाली माँ को बुलाओ, फिर कलकत्ते वाली को बुलाओ, फिर बनारस वाली को बुलाओ, दरवाजी कहते हैं इस चावल वाली बात तो ठीक है, काफी वाली बात तो ठीक है, तेरे 3 माँ के सारा बड्डा फूट गया, मैं केले को बुलाया कहा आपने कहा था मैं कुछ भी खाऊ कुछ भी खाऊ, 3 नाम ले। अरे भाई चावल 3 जगह हो सकता है, काफी माँ थोड़े कहा आपसे कहा था कुछ भी खाऊ 3 बार, गुरु के मूर्त के तो एक इसलिए कहते हैं कुछ चीजें ऐसी है कि उसे तर्क पर उतारना बस, चावल 3 जगह हो सकता है काफी 3 जगह के, लेकिन माँ 3 जगह कैसे कहते हैं। इसी तरह से कहते हैं हमें किसी की निंदा नहीं, पिता अपनी जगह, हमें चाचा का आदर करना है, हमें ताऊ का आदर करना है, लेकिन पिता की जगह किसी को बैठाना, इसी तरह जो ईष्ट है राम तो राम किस तो किस, हमारे जो मुस्लिम भाई लाख का तो उसका कि अल्लाह की सेवा कुछ नहीं, पूर्ण समर्पण है उसमें, हमारे यहां भी यही है जब आप जाते हैं तो समर्पण की बात, तो प्रार्थना में समर्पण है और समर्पण में आप और आपका जो इष्ट है उसके बीच में विचार में तीसरा नहीं आना चाहिए, नहीं तो गीता में इसको कहा गया है बड़े सुंदर से, जो गीता का ध्यान करते हैं और बड़े प्यार से कहूंगा भ्रष्ट जैसे पति सलग जाना तो उसे भ्रष्ट स्त्री बोलते हैं ना, व्यभिचारी बोलते हैं, ये व्यभिचारी प्रार्थना कि पति के साथ बताते हुए दूसरे का ध्यान करो, अपने ईष्ट के सामने बैठकर दूसरे का ध्यान करो, इसमें पाप नहीं है विचार। अब एक प्रार्थना के 2 स्वरूप लेकिन असली स्वरूप है देना, प्रभु ये शरीर आपका, ये मन आपका, ये जो कुछ आसना है सब आपका, मैं तो केवल निमित्त हूं। तो एक है प्रभु को देना जो कुछ है और एक है सब कुछ है फिर भी मानना, एक आसन और बन जाए, एक बंगला और बन जाए, भगवान कहते हैं तू कितनी प्रार्थना कर, जो कुछ आज है अगर उसमें नहीं शांति है तो कितना भी दूंगा कभी शांति आने वाली ये जा सके। इसी पर हमारे इसी बात पर हमारे फिलासफर जो दार्शनिक हैं, कितने दार्शनिकों ने कहा, हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने, ईसाई सब ने कहा, समस्ती में बता रहा है, जो एक कमरे में ठीक से नहीं रह सकता, दस कमरे बना लीजिए कुछ नहीं हुआ। जो एक कपड़ा, एक जोड़ी कपड़े में जो अच्छी तरह पहन के नहीं रह सकता, पचास जोड़ी बनवा दो कुछ नहीं होगा। जो एक जोड़ी जूता संभाल नहीं सकता, पचास जोड़ी नहीं करेगा। अर्थात कम से कम रहने पर जो संभाल सकता है वही अधिक रहने पर संभाल लेगा, और जो कम रहने पर नहीं संभाल पाता, कितना भी हो जाए लेकिन कभी संभाल नहीं पाएगा। दार्शनिक कहते हैं संभालने की बात है, जो आज को नहीं संभाल पाया तो जिंदगी कैसे संभाल पाएगा। क्षण क्षण का नाम जिंदगी है। अगर आप क्षण को नहीं संभाल पाए तो जा विचार करो लंबी जिंदगी कैसे संभाल पाए। एक कुर्सी आपने मुझे दिया, हजारों कुर्सियां, लेकिन जब तक इस कुर्सी पर बैठ कर प्रवचन करना है तो एक घंटे सवा घंटे इस कुर्सी पर बैठ के मुझे नहीं शांति मिली, तो बगल में चांदी सोने कुर्सी पर भी शांति मिलने वाली नहीं। आप जहां भी हो शांति वहां है। आप खोजते हो ना, शांति का अर्थ अंदर है, और प्रार्थना शांति के लिए है, शांति के लिए नहीं। कई बातों में महाराज जी आज भजन नहीं हुआ, आज सुबह माला नहीं हुई, मैं बहुत अशांत हूँ, गुरु मंत्र का जाप नहीं हुआ, जवाब देता गुरु मंत्र मैंने शांति के लिए दिया है और मेरा ही गुरु मंत्र अशांत कर रहा है, तो जो 11 रुपया दिया था 22 ले ले, और जो एक नारियल दिया था 2 ले ले, लेकिन मुझे वापस कर दे, मैं शांति कारण नहीं बनना चाहूँगा। मैंने गुरु मंत्र शांति के लिए दिया, समझ का फेर। इसलिए कहा गया है कि प्रार्थना में योगक्षेम वहां था, गीता की प्रार्थना, हे प्रभु मैं आपके प्रति समर्पित हूं, जिस समय जिसकी जरूरत आप देना और कैसे भी समय में रखोगे, लेकिन मेरे मन से श्रद्धा का किसी भी तरह खंडित होने का अवसर नहीं आएगा। अब प्रार्थना क्या है सर, अगर मांगोगे और नहीं मिलेगा छोड़ दोगे, लेकिन देने की बात करोगे जो गीता का आधार पर है वो छह, हर हालत में मैं आपका हूं, देश में रहूं परदेश में रहूं, काउ भेष में रहूं काउ राव का, मैं यहां ना रहूं कहीं भी रहूं, अच्छे कपड़े में रहूं कि फटे कपड़े में रहूं, मैं हलवा खाऊं पूरी खाऊं कि चना खाऊं, लेकिन प्रभु हमेशा आपको याद करता रहूंगा और हर हालत में मैं आपके कृपा भी मानता रहूंगा। जहां सौदेबाजी होगी वहां मुश्किल हो जाएगी। अब जा सोचिए तो सही, एक विचार मैं आपको देता हूं और विचार को जरा आप समझिएगा, मैं भी समझू और आप भी समझे, सभी समझे। प्रेम में कभी लड़ाई होती है, प्रेम का तो देना है, सैक्रिफाइस। प्रेम की लड़ाई में कहीं भी कुछ देखने को नहीं आता देने के, दो भाई भी हो प्रेम है देने की बात करें, लेकिन रामायण महाभारत में ही दिखा गया कृष्ण को प्रेम स्वरूप माना गया। प्रेम का ही कृष्ण है, प्रेम का नाम ही कृष्ण है। इन्होंने आतताइयों का, विरोधियों का, अत्याचारियों का समझाने को कोशिश की, नहीं समझे तब दमन किया। कई बार अंत तक वाणा तो जब लड़ने आया तब भी कहा भी अवसर है तो अपने को सुधार ले, तो कहा मैं भगवान। राम ने अंतिम प्रयास किया कि रावण को सुधारो, अंगद के द्वारा, हनुमान के द्वारा, विभीषण के द्वारा, तो इनका प्रेम में बदले की भावना नहीं है, लेकिन सुधारने की भावना है। लेकिन प्रेम का जब अतिक्रमण हो जाता है, हमारे प्रेम को कोई कमजोरी मानता है, हमें निर्बल मानता है, फिर राम ने भी कृष्ण ने भी आप देखिए अगर पढ़िए कृष्ण ने कब सुदर्शन चक्र चलाया, शिशुपाल को भाग नहीं समझा तब चलाया। इसी तरह से हिरण्यकश्यप की बात करो, रावण की बात करो, राक्षसों की बात करें, सब जगह अगर आप देखिए हमारे अच्छे लोगों ने भगवान ने समझाने की कोशिश किया। हिरण्यकश्यप की बात करें, अगर आप लोग ज्यादा नहीं पढ़े तो कंस की बात हो गया, हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़े लेकिन महाभारत कंस भी जब कहता है कि आए ग्वाले आज तेरी मृत्यु आई है, फिर भी कहा आप अपने विचार को बदले, आप ऐसे हल्के शब्दों का उपयोग ना करो मामा। लेकिन कंस नहीं सुना, फिर उन्होंने कदम उठाए। प्रेम किसको प्रेम रूप माना गया, तो प्रार्थना में जब प्रेम होगा तो मैं आपको देना चाहूंगा, आप मुझे देना चाहेंगे। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है प्रेम में बदले की भावना नहीं होती। लेकिन जहां पर ध्यान प्रेम न होकर के व्यवसाय होगा, व्यापार होगा, आपको कमाने का साधन माना जाएगा, क्योंकि आप स्वयं नहीं कमा सकते। इसलिए कभी राम के नाम से कमाते हैं, कभी किसके नाम से कमाते हैं। आते हैं लोग मेरे पास, मुझे अमरनाथ जाना है, मुझे हरिद्वार जाना है, क्यों उनके नाम से नहीं मिलता कुछ, इसलिए अमरनाथ हरिद्वार के नाम से। और यहाँ जो मेरे पास में रहने वाले सब ऐसा है, इन्हें पता नहीं, वकील साहब से बात देखिए कि दो दिन के बाद वो भरूच में घूमते हुए मिलेंगे अमरनाथ की बात करने वाले। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ये जो व्यापारी है उनसे आपसे कोई मतलब नहीं, ना राम से मतलब, ना कृष्ण से मतलब, ना गुरु से मतलब, मतलब अपना व्यापार। क्या व्यापार मुझे मालूम है, मैं स्वामी जी का शिष्य हूं और पहुंच जाते कभी गांधीनगर कभी यहां, कई स्वामी जी ने मुझे कहा है कि बिना मेरे पूछे कुछ ना कर, फिर उनकी सीटी पटाखी बंद हो जाती, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास आने वाले सभी भजन के लिए नहीं आते, राम नहीं चाहिए उन्हें, माया चाहिए, लेकिन कुछ तो राम राम करें। इसलिए मैं पहले कह रहा कलेक्टर आएगा, डीएसपी आएगा, मंत्री आएगा, लोग आपके पास आएंगे, मेरा प्रचार है, लेकिन बिना मेरे पूछे किसी काम नहीं करो, नहीं तो हम गीता के बजाय बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कह रखा है सब, क्यों कह रखा है कि मैं दुनिया को जानता हूँ, दुनिया तो आज बात को भी बेच रही है और बात नहीं बिके तो गाली दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जरूरत पर बाप के पांव पड़ते हैं और गाली देते हैं, तो जो अपने बाप को गाली देता है मेरी इज्जत क्या करे, क्या गुरु की इज्जत करे। वो गुरु को व्यापार मानता है, बस गुरु है, इनके चेले हैं, उनसे काम निकालते रहे, बस चलता रहे, गुरु को बेवकूफ बनाते रहे, तो मैं भी बेवकूफ बन रहा हूँ, आपको खुले आप करना। लेकिन समझ आते ही उनको सुधारने की कोशिश करता, तो आज तक मैं भी बेवकूफ बना, कई लोगों ने बनाया, कहता कुछ नहीं, यही मैं आपसे कहूँ, बेटा बाप को बेवकूफ बना रहा है 50%, और बाप भी बेटे को बेवकूफ बना रहा है, पत्नी पति को बेवकूफ बना रही, पत्नी पति को पति, क्योंकि बातें मेरे तक आती हैं, इसलिए करता हूँ। तो केवल गुरु चेले की बात नहीं है, आप सबको सावधान कर रहा हूँ। 50% मैं देख रहा हूँ कि प्रार्थनाएं हो रही है, हम मंदिर भी जा रहे हैं, लेकिन बाप भी दुखी है, पत्नी भी दुखी है, सब दुखी, क्यों दुखी है? लड़का बाप का कहना नहीं मानता, पति अपनी मनमानी करता है, पत्नी का आदर नहीं करता। एक बात का कलयुग में लिखा हुआ है, पत्नी 100 रुपया मांगेगी तो नहीं देंगे, लेकिन बाजार में रहने वाले को 1000 रुपया लोग देंगे। अपने बाप को पानी नहीं पिलाएंगे, लेकिन जहां जुआ खेलने जाएंगे वहां शराब भी पिलाएंगे और पैसा भी देंगे। यह है कलयुग का फल। जो बहुत झूठ बोलेगा, गप्पा मारेगा, वो विद्वान कहलाएगा। जो सच बात बताएगा वो पूरा कर। कलयुग का वर्णन, कलयुग में केवल पैसे की कीमत होगी, रिश्ते की कोई कीमत नहीं होगी। ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का गुरु है। पैसा मिल रहा है तो गुरु भी है, बाप भी है, कोई कुछ भी नहीं। कलयुग में लिखा हुआ, इसलिए आप लोग बचें। और ये सत्य मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा? पैसा चाहिए हमें, लक्ष्मी हैं, लेकिन धोखा देके नहीं, भूत बना के नहीं। चाहिए हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। लक्ष्मी हमें जब माँ के रूप में चाहिए, आपको माँ के रूप में। इसलिए प्रार्थना में जब भाव आता है तो भाव के साथ हमारी बुद्धि का निर्माण करना है, मतलब बुद्धि पवित्र बनती है। अभी रमजान आया, मुझे उर्दू कितना ज्ञान नहीं, लेकिन इतना ज्ञान है। आप किसी मुस्लिम से पूछे रमजान का अर्थ क्या है, ये रमजान का महीने का अर्थ क्या है, रमजान का अर्थ क्या है? हम ईश्वर की, अल्लाह की इबादत करके अपने दुर्गुणों को, अपने पापों को धोए और पवित्र बन करके हम आगे समाज में पवित्रता का प्रचार करें। पहला रमजान, जो कुछ मैंने सुना है मुझे इतनी उर्दू नहीं आती, लेकिन जो मौलवी है मेरे संपर्क में, कई बार पूछता हूँ कि रमजान क्या है, तो रमजान चाहिए एक महीने तक हम अपने दुर्गुणों को शांत करें, जो कुछ हमसे भूल हुई है पाप उसका करें, धोएंगे और निर्मल बन करके, शुद्ध बन करके समाज में अच्छा काम करेंगे, ये रमजान का धर्म। लेकिन हमने कई बार देखा कि रमजान में ही वैसी की बातें हो रही जो समझ में नहीं आ रही। मैं वो सब बात उठाना नहीं चाहता। आप यहाँ क्यों आते हैं? आप इसीलिए आते हैं कि आपका मन पवित्र बने, शुद्ध बने। लेकिन आज रात में आप बंद करके हिसाब लगाना, कितने दिनों से मेरी बातें हो रही हैं और आप लोग अंदर से कितने अच्छे बन रहे हैं उसका हिसाब लगा, कितने समय काटने आते हैं, कितने को प्रवचन अच्छा लगता है, कितने होता है कि अच्छा लगता है, लेकिन मानने के लिए सही है। इसलिए हमारे कितने भी कह दिया हे अंजुन, जो मैं तुझे बता रहा 1000 लोग सुनेंगे, लेकिन तेरी तरह कोई एक ही स्वीकार करेगा, बाकी सब स्वीकार करने वाले नहीं। गीता में मैं प्रवचन में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, हाथ जोड़ता, ये आप स्वयं हिसाब लगाइए कि आप लोग कहाँ, वेर यू स्टैंड, क्या मेरी बात को मान रहे हैं, या केवल आपके स्वास्थ्य की पूर्ति होती है इसलिए मान रहे हैं, कहीं मुझे व्यापार का केंद्र नहीं बना रखा है कि यहाँ गवर्नर आते हैं, कलेक्टर आते हैं, मेरा काम हो जाएगा, दृष्टि कहीं और है, माध्यम कोई और है। इसलिए हमारे दृष्टि उन्होंने कह दिया, करवा नहीं समझाना चाहता, स्वभाव से कागला कितना ऊपर उड़ेगा लेकिन उस सड़े हुए मांस पर निगाह रखेगा। यही बात कबीर ने कहा, मेरे शिष्यों तुम्हें इतिहास की कितनी ऊंची बातें बताऊं, लेकिन तुम्हारी गति कागला की होगी तो कितनी ऊंची बातें लेकर के उड़ोगे, लेकिन निगाह तो कहीं सड़े मांस पर ही रहेगी, वो हालत है। लेकिन फिर भी हमें अपना फर्ज अदा करना है, चलना है। कितना समय आपके हाथ में, एक एक दिन करके तो बीत गया, अब किस माया में पढ़कर जीवन का सत्यानाश करना चाहते हैं? तो रूप की माया में, पैसे की माया में, किसकी माया, जो कि कभी आपके साथ जाने वाले थे, जो विचार साथ जाने वाला, जो हृदय साथ जाने वाला है, जिससे नए जन्म की शुरुआत होगी, उस पर विचार करो। इसलिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे शुद्ध करो, बुद्ध करो, मुक्त करो, मुक्त रहकर के मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं, मैं अपने धर्म का पालन करूं। धर्म पालन में मोह नहीं आना चाहिए। वाणासुर को शिव का वरदान प्राप्त है, शिव पुत्र है, और वरदान प्राप्त है, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। और कृष्ण जब शिव से मिलते हैं, कहते आप जानते हैं मेरा सुदर्शन, चाहे किसी को कितना वरदान प्राप्त हो, लेकिन एक बार छोड़ने के बाद निष्फल नहीं जाता, लेकिन वाणासुर आपका पुत्र है, मैं कोई प्रज्ञा अपराध करना नहीं चाहता। आप वाणासुर को समझाइए। उन्होंने कुछ बताया, किसने सुदर्शन चक्र चलाया, बीच में आकर शंकर रोकते हैं और वाणासुर को समझाते हैं, तो मेरा पुत्र है, पिता का धर्म है कि पुत्र को बचाना, इसलिए पिता के नाते मैं तुझे बचा रहा हूं। किसको प्रार्थना की कि अपना सुदर्शन वापस करो, किसने कहा जी हाँ मैं वापस करना जानता हूँ, वापस आए तब जाके वाणासुर को लगा कि पिता क्या हो, ये वाणासुर शिव पुत्र है, अगर नहीं जानते तो आज से जान लीजिए, शिव पुत्र कार्तिकेय का छोटा भाई, बड़ी शक्ति प्राप्त की, सहस बुझाए थी लेकिन अभिमानी हो गए। और कृष्ण ने शंकर से पूछा, कहते नहीं आप अपने धर्म का पालन, इसका अभिमान टूटना जरूरी है। किसने सुदर्शन चक्र चलाया खत्म करने के लिए, लेकिन बीच में शंकर आ गए, मैं तेरा पिता हूं, मैं तुझे बचाऊंगा, हे कृष्ण सुदर्शन वापस लो, वापस लो, फिर तब जाकर के सुधर बढ़ो। आज भी यही बात है, पिता किस तरह से, गुरु किस तरह से, माँ किस तरह से अपने बच्चों को बचाते पता ही नहीं चलता, और फिर भी हम पिता के सामने, गुरु के सामने, माँ के सामने से पूछा करते, तुम्हारे दुख का हरण करने वाली आपकी माँ है, आपके पिता आपके गुरु हैं, अगर उनके सामने से उठाओगे तो आपके दुख का हरण कौन करे, या विचार करो। इसलिए प्रार्थना में नम्रता, प्रार्थना में भाव है, और भाव यही है, भाव का है प्रेम। किसका प्रेम देखिए, सब कुछ किया और दोस्तों को समझाने के लिए अब तक प्रेम कहाँ डाल दिया, और नहीं समझे तो कदम उठाए। राम की बात लीजिए, राम और सीता का प्रेम है, लेकिन सीता के प्रेम में हक है, और हक कितनी तकलीफ में ले गया, प्रेम में हक नहीं होता, झंझट नहीं होती, ये प्रेम की परिभाषा है। इसलिए प्रार्थना में प्रेम भाव है, त्याग, और योगक्षेम का होता है, उसका कहानी सुना दूंगा। प्रार्थना में राजा से प्रार्थना की गई कि हमारे गांव में बच्चों के लिए एक छोटा हाथी का बच्चा चाहिए। गांव वालों ने राजा से प्रार्थना की, हमारे गांव के बच्चों को देखने के लिए एक हाथी का बच्चा चाहिए, हम गांव में रखें। राजा ने कहा ठीक, प्रार्थना सुनकर के राजा ने हाथी का बच्चा दिया। गांव थोड़ा गरीब था, गांव वाले चार दिन के बाद राजा के पास गए, कहे हमारा गांव छोटा है, हमारे पास जमीन नहीं है, हम इसके लिए घास कहाँ से लाएं, चारा कहाँ से लाएं, कि इसको खिलाने के लिए कहाँ से लाएं, हमारा गांव छोटा है। कहा कोई बात नहीं, मंत्री को बुलाया कि हाथी का पूरा प्रबंध किया जाए राज की तरफ से। प्रार्थना की गई, हाथी मिला। फिर प्रार्थना की गई कि हाथी का भरण पोषण कैसे करें, यही योग क्षेत्र। आप प्रार्थना करोगे तो आपको मिलेगा हाथी, लेकिन हाथी को भगाना नहीं है। हाथी के आने के बाद परेशान होकर उसके भोजन को देख करके डरना नहीं है, फिर प्रार्थना करो। जिसने हाथी दिया उसका प्रबंध करेगा। जिस भगवान ने आपको पुत्र दिया, पुत्री दिया, मकान दिया, कोठी दिया, अगर परेशान हो तो उसी भगवान से प्रार्थना करो। जैसे गांव का हाथी आने पर परेशानी के बाद उसी प्रार्थना से गांव की परेशानी दूर हो गई, इसलिए आपकी प्रार्थना से, कर्म से जो कुछ मिला है उसमें अगर तकलीफ है फिर प्रार्थना करो, इसलिए वो तकलीफ दूर हो जाएगी। आपका हाथी, आपका मकान वापस राजा लेने वाला है। यह प्रार्थना, इसलिए हर घर में रोज की प्रार्थना क्यों है? मैं तो क्रिश्चियन कॉलेज का पढ़ा हूँ, वहाँ हर प्रकार की प्रार्थना होती थी, क्योंकि वहाँ हिंदू भी पढ़ते थे इसलिए प्रार्थना की जाते। संडे तो चर्च में क्रिश्चियन जाते, कभी कभी मैं भी जाते। लेकिन सैटरडे की प्रार्थना में भी शाम को जो क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े जाते एवरी सैटरडे, वो प्रार्थना होती थी बीच में, और उसमें अंत में यही कहा जाता था बाइबल के हिसाब से, हे प्रभु मैं आनंद में रहूं, दूसरे को आनंद हो, मैं सुखी रहूं, दूसरे को सुखी करूं, मुझे आज का भोजन दो और आज जो भी अतिथि आए उसको भी भोजन करा, मुझे आज पढ़ने की, हम लोग पढ़ते हैं, आज पढ़ने की शक्ति, ये प्रार्थना। और जब चर्च पर जाता था तो मुझे वहाँ कोई कलेक्टर कोई ये हो तो सब कहते थे, आज मैं अपना काम अच्छी तरह करूँ, हे प्रभु शक्ति दो ये करूँ। और साथ ही साथ चर्च में होता कि मेरे जो इस देश के राजा हैं उनको शक्ति दो कि प्रजा का पालन करें। ये है जो कृष्ण दास पढ़े देखिए, तो हर सैटरडे जो प्रार्थना होती है आज आज की बात। आप रोज मस्जिद क्यों जाते हैं? इसीलिए। आप मंदिर रोज क्यों जाते हैं? इसीलिए। बात हमारी है लेकिन हम ठीक से समझ नहीं सके, इसलिए रोज सुबह जो प्रार्थना गुरुकुल में होती थी आज भी स्वामीनारायण धर्म में भी है, हमारे यहाँ का मदरसे मतलब जो मुस्लिम है वहाँ तो होती ही है, ईसाइयों के यहाँ अपने ढंग से करते हैं लेकिन हर संडे करते हैं, कॉलेज में हर सटरडे शाम को करते हैं। इसलिए प्रभु से मांगो, आप योग्य हैं तो देगा, तकलीफ है तो तकलीफ दूर करें, जिसने दिया है वही दूर करें, दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं, सबका आदर करो, सबका सत्कार करो। तो आज डॉक्टर साहब ने, पटेल साहब ने इंद्रबदन जो विषय प्रार्थना दिया, इसमें न पढ़ाई की जरूरत है न जाति पाति की जरूरत है, इसमें भाव के प्रेम की जरूरत है, और भाव प्रेम सब जन्म से लेकर आए हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल की जरूरत नहीं कि स्वामी जी कौन सा स्कूल है जहाँ जाने के बाद हम कैसे प्रेम हो सीखा जाए, कैसे भाव आए सीखा जाए। इसलिए प्रियात्मन अपने जीवन को प्लाज्मा में बना दें, चाहे आप खेती करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं कि मिलिट्री में हैं कि प्रवचन करते हैं, ये प्रभु कृपा भगवान ही सुन रहे हैं। आप कोई भगवान को रूप मानकर सेवा में सुना ना, इसलिए गांधी ने लिखा प्रार्थना मैं अपने को सुधारता हूँ आपको साथ रखता हूँ, इसलिए प्रार्थना में अपने को सुधारने की बात। और जब हम सुधरेंगे तभी तो दूसरे सुधार सकते हैं, जब हम जागेंगे तभी तो दूसरे को जगा सकते हैं, हम तैरना जानते हैं तभी दूसरे को सिखा सकते हैं। इसलिए आज का जो विषय डॉक्टर साहब ने इंट्रोडक्शन दिया बहुत ही सुंदर, आप जहाँ हैं वहीं प्रार्थना में बदले की भावना, सर्वे भवन सुखने की बात है। प्रार्थना में है सबको हे भगवान सुखी रखो, और निश्चित शुरुआत आपसे ही होगी। आप लाडू बांटेंगे तो पहले आपके हाथ में आएंगे, आप टीचर बांटेंगे तो पहले आपके हाथ में आएंगे, जो आप देना चाहते हैं पहले आपके पास आए। अगर चाहते हो कि पूरा समाज सुखी रहे तो उसकी शुरुआत आपसे ही होगी। आप चाहते हो कि पूरा समाज दुखी रहे तो उसकी भी शुरुआत आपसे ही होगी। जो आप देना चाहते हैं उसकी शुरुआत आपसे ही होगी। इसलिए प्रार्थना में देना, और प्रभु जिस लायक में योग्य हो, कोई भी परिस्थिति हो, न मैं आपका त्याग करूं, न मैं अपने कर्म का त्याग करूं, इसी भाव का फिर श्रद्धा है। यही प्रेम भाव, लव एंड फीलिंग, व्हेन मल्टीप्लाइड देन दैट बिकम्स द फेथ, श्रद्धा। ये भाव और ये प्रेम आपस में जब गुणांक होते हैं तो श्रद्धा होता है। अब श्रद्धा कहते यही है कि मैं अपने गुणों का, अपने प्रेम का, अपने भाव का त्याग न करूं और कर्म करता रहूं। या फिर पढ़े लिखे लोग सज्जन, प्रेम मल्टीप्लाई, प्रेम का गुणांक करो भाव से, अंग्रेजी में लव एंड फीलिंग। जब प्रेम और भाव गुणांक होगा तो श्रद्धा होगी। When love is multiplied by feeling, then that becomes the faith. और faith का अर्थ क्या है? श्रद्धा का, कुछ भी हो जाए लेकिन ना मैं अपने कर्म छोड़ूंगा ना भगवान को छोड़ूंगा। ये प्रार्थना का स्वरूप है। हर क्षण इस स्वरूप को याद करते हुए अपने नित्य काम को करो। हर जगह उसकी जरूरत है। सुबह प्रार्थना करके अपने काम में लग जाओ, शाम को प्रार्थना करो, कहा दिन मैंने अच्छा काम किया, रात मुझे नींद आए, मुझे और कुछ ना आए। इसलिए प्रार्थना के द्वारा तन और मन को पवित्र और शुद्ध बना करके रोजाना अपने कर्म को सुंदर रूप से करो। ये है प्रार्थना कर्म। हरि ओम। अरे एक मिनट और, हमारे जो प्रेसिस राजू हैं, राजेश हैं सूरत के, आज उनका जब दिवस है और अपने जब दिवस खुशी में पूरे परिवार के लिए जो कुछ भोजन का प्रबंध किया गया, प्रसाद का, ये सूरत वाले राजू की तरफ से आप स्वीकार करेंगे और राजू का आशीर्वाद से हर तरह सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, आप सबकी सेवा करते रहें, आनंद रहे। तो राजू की तरफ से आज का पूरा प्रबंध उनके जन्म दिवस पर है, आप लोग उनको आशीर्वाद। Thank you.